सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस इलाके में फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि करीब 10 बरस पहले जसपुर में आने का अवसर मिला था और कल शाम इसी प्रकार से विशाल रूप बना नजीबाबाद में, जहां पर 20 बरस के बाद फिर से जाने का मौका मिला। जहां जहां पर भी जाने के अवसर मिल रहे हैं, वहाँ वहाँ ही ऐसी लगन, ऐसा उत्साह देखने को प्राप्त हो रहा है। जहाँ पर सभी संतों, महात्माओं, वलियों, गुरु पीर पैगंबरों के संदेश को अपना कर इस जीवन के सफ़र को तय करने के प्रयास कर रहे हैं, संसार को हमेशा से ही युगों युगों से संतों महात्माओं ने एक पाठ पढ़ाया और वो पाठ था प्यार का, प्रेम का, जिसको संसार अक्सर भूलता चला जा रहा है। आजकल भी अक्सर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और जिन बच्चों को पूरी तरह से याद रहता है पाठ, वही वास्तविकता में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्यार का पाठ संतों महात्माओं ने पढ़ाया, जिसने वो सबक याद कर लिया, उसी का ही सफल होना ये निश्चित हुआ है। युगों से महापुरुषों ने, संतों ने हमेशा ही हर इंसान को, हर मानव को यही पैगाम दिया है कि इंसान, तुम इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हो, ये घड़ियां मालिक ने बख्शी हैं वैर, ईर्ष्या, घृणा करने के लिए नहीं। तुम्हें इंसानी जन्म दिया है तो तुम इंसानी चाल चलो। इंसानी जन्म पाकर भी तुम जानवर और शैतानों वाली चाल चलते हो, जिसके कारण कहा गया कि करतूत पशु की मानुष जात, कि करतूत तुम्हारी पशुओं वाली बनी हुई है, लेकिन कहलाने को तुम इंसानी जामे में हो। मनोर्भव मनुष्य बनो, ये वेदों में कहा गया, यानी कि इंसानी जामा पाकर भी तुम इंसान बन के जीवन नहीं जीते हो। तो ये कैसी पीड़ाजनक बात है, ये कैसी विडंबना है कि सबसे उत्तम जन्म पाकर भी तुम जितनी सोचने समझने की ताकत मालिक ने इस योनि को प्रदान की है अन्य योनियों के मुकाबले में, जहाँ पर लाखों योनियाँ का जिक्र आता है, अक्सर धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। कोई 84 लाख माने या ना माने, लेकिन निश्चय ही लाखों की संख्या में योनियाँ हैं। और आजकल टीवी चैनल्स, कहीं जियोग्राफी चैनल, कहीं डिस्कवरी चैनल, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे स्पीसीज के बारे में, कोई जल में कैसे कैसे प्रकार के जीव जंतु हैं, ज़मीन पर कीड़े मकौड़े से लेकर पता नहीं कितने ही ऐसे रेंगने वाले और भागने वाले, कैसे ही जातियां प्रजातियां हैं। और इन तमाम योनियों में कहीं पंछियों के रूप में आसमानों में पंखों के साथ उड़ान भरने वाले, तो इंसानी जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म माना गया है कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि इंसानी जन्म पाना तुझे एक सरदारी मिली है अन्य योनियों के मुकाबले में, लेकिन इस सरदारी का तूने क्या किया, इसका हश्र क्या किया? वो सबसे अधिक सोचने समझने की ताकत जो तुम्हें दी गई, ना किसी शेर चीते को दी, ना किसी गाय भैंस को दी, ना किसी ऊंट बकरी को दी, ना किसी मछली को दी, ना किसी परिंदे को दी, उन तमाम में से सबसे ज़्यादा सोचने समझने की ताकत मालिक ने तुम्हें बख्शी है, इस इंसान को बख्शी है, इस बंदे को बख्शी है। लेकिन सबसे ज़्यादा नादानी यही कर रहा है। तो फिर ये पीड़ाजनक बात हुई के ना हुई, ये कैसी विडंबना हुई के ना हुई कि इंसान उत्तम जन्म पाकर भी नीचे दर्जे वाला बन के जीवन को सफर तय करता है। नीचे दर्जे वाला वो नहीं है, अक्सर हम कहते हैं कि मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, और क्योंकि इसकी जाति नीची तो ये नीचे दर्जे वाला है, मैं पढ़ा लिखा हूँ ये अनपढ़ है, ये नीचे दर्जे वाला है, मैं गोरा हूँ ये काला है, ये नीचे दर्जे वाला है, मैं धनाढ़ हूँ ये रंग का है, ये नीचे दर्जे वाला है। तो ये पैमाने नहीं है ऊंचा होने के या नीचा होने के, चाहे वो निर्धनी क्यों ना हो, अगर वो उस सोच और समझने का सही उपयोग कर रहा है, वो कल्याण के रास्ते पे चल रहा है, वो सत्य परमात्मा अकाल पुरख इस निराकार ईश्वर के साथ नाता जोड़ के अपना परलोक सुहेला और लोक सुखी कर रहा है, जो प्यार की चाल चल रहा है, जो इंसानियत की डगर पर चल रहा है, जो दूसरों को सुख देने में यकीन रखता है, जो दूसरों के आंसू पहुंचने में योगदान देता है, जो लबों के ऊपर हंसी प्रदान करता है, वो वास्तविकता में वो बहुत ऊंचा हुआ करता है। यानी कि दुनिया ने जो पैमाने बनाए वो पैमाने नहीं हैं ऊंचा होने के या नीचा होने के, ये पहचाने या पैमाने अमीर होने के, गरीब होने के, ये संसार के कुछ और हैं और भक्तों के कुछ और हैं। संसार में अमीर उसको मानते हैं जिसके पास बहुत जायदादें हैं, दौलतें हैं, कितनी मुरब्बे ज़मीनें हैं, पता नहीं क्या क्या है, और वो अमीर कहलाया जाता है, धनाढ़ कहलाया जाता है। लेकिन महापुरुषों का पैमाना है कि नाम धन जिस जन के पल्ले से ही सच्चे शाह, कि जिनके हिस्से में ये नाम धन है वही सच्चे शाह है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कि यानी कि एक धनाढ़ होने की या रंक होने की पैमाना वो कुछ और ही है, वो संसार वाला नहीं है। इसी प्रकार से आँखों वाला और अंधा, इसकी भी परिभाषा कुछ और ही है। संसार में आँखों वाला वो है जो ये काले पीले लाल नीले, ये कुदरत, ये कायनात, ये बंदे, ये बाकी सब कुछ देखता है, वस्तुओं को देखता है, बाकी चीज़ों को देखता है, रंगों को देखता है। तो जो देख पाता है कहते हैं ये आँखों वाला है, और जो नहीं देख पाता वो अंधा है। लेकिन महापुरुषों की परिभाषा कुछ और है, वलियों गुरु पीर पैगंबरों की परिभाषा कुछ और है, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज और अन्य तमाम पैगंबरों के वचन हम पढ़ते सुनते हैं कि अन्य सेना आखिए जिन मुख लोयण नाई, अन्य से ही नानका जो कसमों को थे जाएँ। कि वास्तविकता में आँखों वाले वो हैं जो इस प्रभु परमात्मा के दीदार करते हैं, जो वास्तविकता में संतों के दर्शन करते हैं, वो आँखों वाले हैं। और जिसके जो इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं वो अंधे माने जाते हैं, वो भले ही देख रहे हैं, वो अंधे नहीं है उस लिहाज से जो डॉक्टर कहे कि अंधा है, उस हिसाब से वो एक नज़र वाले हैं। लेकिन महापुरुष संत जनों ने तो कदम कदम के ऊपर यही इंसान को समझाने के प्रयास किए हैं कि इंसान, तू अगर सच के रास्ते पे चलता है, अगर इस परमात्मा ईश्वर निराकार का आधार लेकर कर चलता है, अगर इसी मालिक को जानकर इसी के एहसास में जीवन का एक एक कदम धरता है, तू एक नेकियां और जो अच्छाइयां हैं उनको अपनाकर जीवन के सफर को तय करता है, विनम्र बन के रहता है, दास भावना से जीता है और तन मन धन का सदुपयोग करता है, तो फिर वास्तविकता में तेरा महत्व है और तूने बात सही मायनों में समझ ली। ये समझ भी उत्तम वही मानी गई है जो सही रास्ता चुन लेते हैं, वही समझदार है, वही सूझवान है। और जो विपरीत रास्ता चुनकर उस रास्ते पे चल निकलते हैं वो नादान, मूर्ख और उनको ना समझ ये कहा गया है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों ने जो फैसले दिए हैं, जो पहचाने बताई हैं, जो वाकई उसको समझकर उस तरफ चल निकलता है, जो तजने लायक है उसको तज देता है, जो अपनाने लायक है उसको अपना लेता है, तो वो वास्तविकता में एक सही मायनों में अपने इंसान होने की पहचान रखता है। वरना दो पांव होने के बावजूद ये इंसान नहीं कहलाता है, जैसे पहले दास ने कहा। तो जितने भी हम वचनों का सहारा लेते चले जाएं, जितने भी हम उदाहरण देते चले जाएं, महापुरुष संत जनों का तो यही अभिप्राय है कि किसी तरीके से इंसान को बात ये समझ में आ जाए। सच्चे धर्म की परिभाषा, सच्चा धर्म क्या है, धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है, ये भी उन्होंने बताया। अगर अमीर कौन है, गरीब कौन है, अंधा कौन है, नज़र वाला कौन है, जहाँ पर ये उन्होंने फैसले दिए वहाँ पर ये भी फैसले दिए कि धर्मी होने की पहचान क्या है और अधर्मी होने की पहचान क्या है, साकत कौन होता है और गुरमुख कौन होता है, मनमति क्या होती है और गुरमति क्या होती है, ये भी उन्होंने बताया कि वास्तविकता में धर्म की असली पहचान क्या है, धर्मी कौन होता है, धर्मी क्या कोई पाठ पूजा करने वाला होता है, धर्मी क्या कोई जप तप स्नान यात्राएं करने वाला होता है, धर्मी या केवल कोई माला फेरने वाला होता है, चंदन का लेप लगाने वाला होता है या खाक शरीर पे मलने वाला होता है। महापुरुष संत जनों के कथन क्या है, महापुरुष कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, तजो सब धर्म भजो पार ब्रह्म कहो नानक अटलिए धर्म। जो भ्रमों से निजात पा लेता है, जो भ्रांतियों से ऊपर उठ जाता है, जो विनम्र बन जाता है, जो दास भावना वाला बन जाता है, जो नेकी वाला बन जाता है, जो करुणा और दया के भाव से युक्त हो जाता है, जिसका मन पिघल जाता है दूसरे को पीड़ित देख के, वो धर्मी है। लेकिन आज जिस धर्म को धर्म मान के बैठ गए हैं, यहाँ पर केवल और केवल दूसरे को पीड़ा देकर खुशी मनाई जाती है। इसका नुकसान दे दो, इनके मकान जला दो, इनकी जाने ले लो, क्योंकि ये हमारे वाले धर्म को नहीं मानने वाले, जिस पैगंबर को हम मानते हैं ये उनको मानने वाले नहीं, जिस धर्म ग्रंथ को हम पढ़ते हैं श्रद्धा रखते हैं ये वो धर्म ग्रंथ नहीं, ये कोई दूसरा धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। यानी कि इस प्रकार से दूसरों के प्रति घृणा और नफरत का भाव रखना और निर्दयता का प्रमाण देना, जुल्म और सितम करने, मार काट करनी, अल्लाह का नाम लेकर, राम का नाम लेकर, अकाल पुरख का नाम लेकर जाति का नाम लेकर, संस्कृतियों का नाम लेकर, भाषाओं का नाम लेकर, प्रांतीयवाद का नारा लगाकर, मुल्कों की हदें और सरहदों का मुद्दा बनाकर, यानी कि अगर इंसान ही इंसान का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला बन गया तो महापुरुष कहते हैं कि इंसान तो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सदियां बीत जाएं, युग बीत जाएं, लेकिन अभी भी तेरा पिछड़ापन कायम है। बहुत मकान बना लिए, बहुत तूने गाड़ियां बना ली, बहुत तूने साधन बना लिए, एक दूसरे से हज़ारों मील दूर बैठकर भी बात करने की, एक दूसरे को देखने की, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी तरक्कियां, टेक्नोलॉजी साइंस के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि मूलतः जो इंसान से जिसकी उम्मीद की जाती है, अगर उसी का अभाव है तो अभी पिछड़ा हुआ है। ये आधुनिक नहीं है, भले ही 21वीं सदी में पहुंच गया है, लेकिन जैसी इसकी चाल है वो बताती है कि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो कहने का भाव जो दासवाद कह रहा था कि महापुरुष संत जो परिभाषाएं बताई हैं, जो पहचाने बताई हैं, तो जो वास्तविकता में वो पहचान सच्ची अपनी बना लेता है, उसी का मुख उजला होता है, वही शाबाशी का पात्र बनता है, वही वास्तविकता में एक आगे बढ़ने वाला माना जाता है, जो करुणा के भाव से युक्त है, जो दया के भाव से युक्त है, जो प्रेम के भाव से युक्त है, जो विनम्र है, जो दूसरे की पीड़ा को हरने के लिए जतन करता है, ना कि दूसरे को पीड़ित करके खुशी मनाता है, दूसरों की जाने लेके जश्न मनाता है, दूसरों को रोता कुरलाता देखकर नाचता गाता है, ये वास्तविकता में अंधकार और उजाले के प्रतीक हैं, ये समझदार और ना समझी के प्रतीक हैं, ये फूल और कांटों के प्रतीक हैं। तो हमने किस श्रेणी में आना है, हमने किस कतार में खड़ा होना है, हमने फूलों की कतार में खड़ा होना है या कांटों की, हमने उजाले वाले बनना है या अंधकार वाले, हमने सही इंसान बनना है या दानव बनना है, हमने सच्चे धर्मी बनना है या अधर्मी बनना है, हमने गुरुमुख बनना है या मनमुख बनना है। तो ये चयन हमारे पास है, ये चुनना हमने है, ये चयन हमने ही करना है। इसीलिए तो वो सोचने समझने के बारे में जो जिक्र आया, जो शक्ति मालिक ने दी है, तो ये हमारे पास है वो चयन, जो ठीक चुनता है उसको विवेकी माना जाता है, कि ये विवेकी पुरुष है। विवेकी क्यों है? क्योंकि इसने सही चयन किया है, इसने सही चुना है, इसने फूल बनना चुना है, इसने कांटे बनना नहीं चुना है, इसने जुबान के द्वारा दूसरों को चैन देना चुना है, ना कि जुबान के द्वारा भी मनों को, दिलों को दुखाने वाले शब्दों का उच्चारण करना नहीं चुना इसने। इसने चुना है कि मैं जुबान से जो बोलूँगा वो महत्वपूर्ण होगा, वो कल्याणकारी होगा, वो दूसरों के दिलों को दुखाने वाला ना होकर मरहम का काम करेगा, सांत्वना देने वाला होगा, मानवता की तरफ प्रेरित करने वाला होगा। तो ऐसे वचन बोलना वो चुनता है, यानी कि वो विवेकी पुरुष है। हर लिहाज से, जुबान के लिहाज से, व्यवहार के लिहाज से, कर्म के लिहाज से, चाल के लिहाज से, वास्तविकता में विवेकी पुरुष वही माना जाता है जो सही चाल चलता है, जो सही बोल बोलता है, नाप तोल के बोलता है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले बोल, हृदय तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल, कि वाकई वो तोल के बोलता है, बेमायने फजूल के बोल नहीं बोलता है, दिलों को दुखाने वाले बोल नहीं बोलता है, उसकी कड़वी वाणी नहीं होती है, वो मीठे बोल बोलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो वो मीठा बोलना उसका ये वास्तविकता में एक उत्तम है, मिठास जुबान की उत्तम है, व्यवहार प्रेम वाला उत्तम है। यानी कि जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसी को चुन लेना, यही विवेकी पुरुष की पहचान है। और विवेक प्राप्त कहाँ से हो, ये भी महापुरुषों ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, कि बिना महापुरुषों के संग किए ये विवेक प्राप्त नहीं होता है। एक उजाले वाले आँखों वाले ही हमें भटकन से बचा सकते हैं। जो खुद अंधेपन के शिकार हैं तो वो तो हमें कहाँ पर ठोकरों से बचाएंगे, वो तो खुद भी ठोकरें खा रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं और हमें भी उसी तरफ ले जाते हैं। यानी कि ये जो समझ असली आती है वो संतों का संग करके ही आती है, कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग मिलता है कि राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, कि वास्तविकता में प्रभु की कृपा होती है, संतों का संग होता है और हमें एक सच्ची समझ मिल जाती है। जहाँ पर ज्ञान का उजाला मिल जाता है, आत्मा का भी कल्याण हो जाता है, आत्मा भी अपने मूल परमात्मा की पहचान कर लेती है। जो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान देते हैं, जिस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का इस मिशन के मंच से छोटे से बच्चे भी पैगाम दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, जहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञानी हमें ज्ञान प्रदान करके हमारी आत्मा की जन्मों जन्मों की वो अज्ञानता दूर कर देते हैं, भ्रमों को मिटा देते हैं, ताकि आत्मा आवागमन के बंधन से निजात पा जाए, ये मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाए, तो ये भी ब्रह्म ज्ञानियों से ही हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संगत करिए साधु की, अंत करे निर्भाव साकत संग न कीजिए जाते हुए बिनाओ, कि संतों का संग करेंगे तो पार उतारा हो जाएगा, और अगर साकत का संग करेंगे तो विनाशी होगा, वो पतन का रास्ता है, वो गिरावट का रास्ता है, उससे कभी भी उजाला हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। तो संगत करिए साधु की, कि संतों का संग, महापुरुषों का संग, ये वास्तविकता में पार उतारने का साधन युगों युगों से बना है। इसीलिए तो युगों युगों से कहा है कि संगत करिए साधु की, महापुरुषों की सोबत करो, महापुरुषों का संग करो, ताकि तुम्हारी सोच अच्छी बने, ताकि तुम्हारी मंजिल मकसूद तुम्हें प्राप्त हो, इस भटकन से तुम्हें राहत मिले। तो इसलिए जिनको ये संग मिल गया, गंगा के संग सलिता बिगड़ियो सो सलिता गंगा हुए निबरे हो, पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन हुए निबरे हो, और चंदन के संग तरवर बिगड़ियो सो तरवर चंदन हुए निबरे हो, और संत संग कबीरा बिगड़े हो सो कबीर रामे हुए निबरे हो, कि इस प्रकार से जैसे एक गंगा का संग कर लेती है जो सलिताएं, जो सलिता नदी या नाले इत्यादि जो झरने कहाँ कहाँ से बह के आते हैं, वो जब गंगा में मिल जाते हैं तो वो गंगा वाली पहचान रखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनकी नाला होने की, उनकी झरना होने की, उनके किसी और दरिया होने की पहचान खत्म हो जाती है, उनकी अब पहचान रह जाती है गंगा के रूप में। जहाँ पे गंगा का पानी बह रहा होता है उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी चलकर आके मिल जाता है, तो नदी को देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो पानी बह रहा है ये फलां नाले से आया है, ये फलां जगह से आया है, ये फलां झरने वाला है। वहाँ पर उनकी अपनी कोई भी पहचान बाकी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से महापुरुष उदाहरण देते हैं कि संत संग कबीरा बिगड़े हो और सो कबीर रामे हुए निबरे हो, कि वाकई वो राम का ही रूप हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जनों का संग ये बहुत उत्तम माना गया है, और वाकई ही जो ऐसा कर लेता है वो वास्तविकता में अपना पार उतारा करा लेता है, वो अपने लोक में ही परलोक का भी सामान जुटा लेता है, और वाकई ही लोक में ही परलोक सवारा जा सकता है। जो सातमा के कल्याण की दास ने बात कही, वो लोक में ही कदम उठाने लायक है, वो परलोक का काम परलोक में नहीं होगा कि शरीर की यात्रा संपन्न होगी उसके बाद आत्मा का कल्याण हो जाएगा, नहीं, इस शरीर में रहते हुए ही ये मंजिल को पाना होगा, ये पहचान यभी बनानी होगी। ये परमात्मा जो अंग संग है इसको जानना ये लोक में ही हमने करना है, ये आगे की बात नहीं है, ये यहाँ पर ही करने लायक काम है। जैसे बुल्ले शाह जी और अनेकों सूफी संतों के वचन हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर नहीं होगा, ये यहीं पर करने लायक कार्य है। कहते हैं कि जे दाज भी हुणी जाएंगी ता किसे मूल ना पाएंगी, उथे पीनू किवें रिजाएंगी, कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े कि कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े। कि वास्तविकता में मेहमान आ गए यानी कि जम आ गए, उस वक़्त क्या करेगी, जे दाज भी हुणी जाएंगी यानी कि आत्मा तो यहीं से, अगर दाज का मतलब वही सच्ची दौलत जिसका दास ने पहले जिक्र किया, किस दौलत के बगैर जाएगी तो उत्थे पीनू किवें रिजाएंगी यानी कि अपने प्रीतम को कैसे रिजाएगी, क्योंकि दौलत तो साथ ली नहीं तुझे, तूने ये दाज सच्चा तूने साथ लिया ही नहीं। ये दाज विहुणी जाएंगी ता किसे मूल ना पाएंगी, पिया को नहीं भा पाएगी, उत्थे पीनू किवें रिजाएंगी। तो कहते हैं कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े, कि वही बात जो दास पहले कह रहा है कि संतों का संग, महापुरुषों का संग, फकीरों का संग, उनकी मत ले ले। संसार वालों की मत लेते हो तो संसार तो खुद डूबता है, साकत तो खुद डूबते हैं, तो तुम उनका संग करते हो तो तुम भी डूबोगे निश्चित। तो इसलिए डूबना नहीं, भव सागर से पार उतरने की बेला है। ये मौका जो मालिक ने दिया है ये भव सागर से पार उतरने का है, ये भटकने का नहीं, ये मंजिल को पाने का है। ये आवागमन के बंधन की लड़ी में चलते रहने का नहीं है, ये वहाँ से भी निजात पाने का मौका है, ये अवसर है। लेकिन इस अवसर को गंवाते चले जाते हैं, अवसर बीतो जाता है, अवसर बीता चला जाता है, सांस कम होती चली जाती हैं, आयु कम होती चली जाती है। जितनी भी मालिक ने उम्र लिखी है उसमें से एक एक पल कम होता चला जा रहा है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना भी ना जानत के दिन दिन अवध घटत है। कि जननी माता जान रही है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, निश्चय ही बड़ा हो रहा है, जब से जन्म हुआ उसके बाद एक एक दिन जो बीता उस लिहाज से तो बड़ा ही हो रहा है। एक साल बीता, दो साल बीते, अब इसका थर्ड बर्थडे है, चौथा है, पांचवा है। तो महापुरुष कहते हैं ये भी सच है कि वाकई बड़ा हो रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सिक्के का एक पहलू नहीं होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये पहलू है सिक्के का और सच्चाई है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, वो कबीर जी बयान कर रहे हैं कि जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना भी ना जानत के दिन दिन अवध घटत है। कि जितनी भी मालिक ने आयु बख्शी है उसमें तो एक दिन कम हो रहा है। अगर इधर उम्र बढ़ रही है तो जितनी मालिक ने उम्र लिखी है उसमें से तो एक एक दिन कम हो रहा है। अब अगला प्रश्न ये है कि इंसान कोई भी छाती पे हाथ रख के बता सकता है कि उसके कितने दिन बाकी हैं, कितनी उम्र बाकी है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुदबुदा है पानी का, यहाँ तो अगले पल का भी पता नहीं है। बरसों की बात करते हैं, बरसों तो दूर, परसों का भी नहीं पता है। एक अब का पता नहीं है, एक सांस का नहीं पता है। अभी हंस रहा था, अभी मर गया। जीस तो और मौत का फासला तो देखिए कि इतनी सी ही सिलसिले हैं ये, जिस पे इंसान इतना गुरूर करता है, इतना अभिमान करता है। एक कण का लगता है तो सब समाप्त हो जाता है। ये तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, पीका लागे टूटेगा कछुना हायो हाथ। ये तो ऐसी वो गागर है कि एक कंकर लग जाए तो सारा पानी बिखर जाता है। यानी कि बात यही महापुरुष बताने के प्रयास करते हैं कि एक एक पल हमारा बीतता चला जा रहा है, एक एक क्षण हाथों से निकलता जा रहा है, और जो बीत जाता है वो लौट के नहीं आता है। जो बीत गया वो बीत गया, अब लौट के नहीं आएगा। अभी बोलते हुए सुनते हुए जो घड़ियाँ बीत रही हैं, इसको वापस नहीं ला पाएंगे। और हफ्ते और महीनों और सालों को वापस कहाँ ले आएंगे? अभी बोलते सुनते ही जो पल बीत रहा है, यही नहीं ला सकते वापस। अभी तो बीता है, अभी अभी बीता है, इसको वापस ले आते हैं, नहीं ला पाओगे। बीत गया, निकल गया हाथों से। तो वही बात महापुरुष कहते हैं कि इन बीतते हुए लम्हों की संभाल कर ले। ये सांस जो हमारे कम होते चले जा रहे हैं, इसकी कदर कर ले। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि कालिया नाल बिगाड़िया ही तौलिया नाल सवार, कि पहले जो बीता सो बीता, जब तेरे काल बाले थे, जवानी की उम्र थी, उस वक़्त तू नादानी करता रहा, लेकिन अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, कम से कम अब तो संभल जा। अभी तो अपने आप को संभाल ले, अभी तो अपनी चाल दुरुस्त कर ले। तो ये बेला है, ये मौका है, ये अवसर है अपने जीवन को संवारने का, मंजिल मकसूद को प्राप्त करने का, आत्मा के कल्याण करने का, धर्म का बोलबाला कराने का, चारों तरफ सुंदर वातावरण स्थापित करने का, अमन और चैन वाली स्थितियां पैदा करने का। ये मौका और अवसर है, और इस मौके का इस कदर लाभ उठाया जाए ताकि वाकई सारे कार्य हो जाएं, आत्मा का भी कल्याण हो जाए, धर्म का भी बोलबाला हम कराने वाले बन जाएं, इंसानियत का रुतबा ऊंचा करने वाले बन जाएं, वातावरण जो चारों तरफ हिंसा का है उसकी बजाय अहिंसक वातावरण बनाते चले जाएं, अमन और शांति बनती चली जाए। अशांति हिस्से में आती है हम सब के, क्योंकि वहाँ पर एक वैर ईर्ष्या नफरत कार्य कर रही होती है, वहाँ पर संकीर्णताएं कार्य कर रही होती हैं, वहाँ पर अधर्म काम कर रहा होता है। इसलिए हम सुकून और चैन से वंचित रह जाते हैं। तो वातावरण ऐसा स्थापित करने का अवसर है कि हम ऐसा सुंदर वातावरण स्थापित करें जहाँ पर सभी राहत की सांस लेने वाले बने, सुख की सांस लेने वाले बने, और हम भी उसी वातावरण में जिएं, औरों को भी वैसा ही वातावरण हम प्रदान करें। तो ये महापुरुष संत जनों के पैगाम हैं, ये संतों के संदेश हैं, और यही संदेश युगों युगों से दिया गया है, जो आज भी इस सत्संग में ये दिया जा रहा है। क्योंकि सच्चाई नई या पुरानी नहीं होती है, सच्चाई तो तरत हमेशा ताज़ा रहती है। ये परमात्मा तो ताज़ा का ताज़ा रहता है, बाकी सब कुछ पुरानी हो जाती है। क्योंकि वो पुरानी इसलिए होती है क्योंकि कभी वो समय था, वो उनका अस्तित्व नहीं था, वो जन्मी नहीं थी, वो उगी नहीं थी, उस लिहाज से वो पुरानी भी हो जाते हैं। लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो कैसे पुराना होगा। ये परमात्मा अजन्मा है, ये कायम दायम रहने वाला है, ये हमेशा रहता है। बाकी सब बनावट मिट सकती है, ये नहीं मिटता है। तो इसलिए इस एक परमात्मा ईश्वर, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के साथ अपने नाता जोड़ें। ये जो अमर परम सत्ता है, शाश्वत परम सत्ता है, जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, ये जो समाई हुई है परम सत्ता, कण कण में व्याप्त है, इसी की अंश आत्मा है। तो हर आत्मा इसके साथ नाता जोड़े, इसका बोध हासिल करे और फिर चल निकले उस डगर के ऊपर जो वास्तविकता में उजाले वाली डगर है, और चारों तरफ उजाला ही स्थापित करते चले जाएं, प्यार ही प्यार बांटते चले जाएं, सुकून और चैन महसूस करते जाएं, औरों को देते चले जाएं, और इस प्रकार से हम सही मायनों में एक जागे हुए और समझदार होने के प्रमाण हम देते चले जाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, समय हो चुका है और आप सभी ने अपने अपने घरों को लौटना है, रात्रि का वक्त है। इसलिए दास शब्दों को विराम देते हुए आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास से, इस प्रार्थना के साथ कि दातार कृपा करें, आप सभी को तौफीक दें कि जिनको ये उजाला मिला वो इसी उजाले में जीवन जीते चले जाएं, मानवता इंसानियत की डगर पर चलते चले जाएं, प्यार करुणा के भाव से युक्त रहें, और जो अभी इस अवस्था में नहीं आए, जो अभी भी दूर हैं, जो अभी भी वंचित हैं इस प्राप्ति से, तो वो भी ये सच की लखता करके जहाँ आत्मा का कल्याण करें, वहाँ पर इस जीवन की यात्रा को भी सुंदर ढंग से तय करते चले जाएं, ताकि स्वर्ग सा रूप इस धरती का बनता चला जाए और चारों तरफ एक ऐसी गुलजार खिली हुई ऐसा रूप हम देते चले जाएं। तो इन्हीं शब्दों से दास इजाज़त चाहेगा, अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करके जो यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है, और आप जो उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, अगर मुजफ्फरनगर में सत्संग हुआ दो दिन पहले, वहाँ पर भी ऐसा व्यापक रूप, और अगर कल शाम नजीबाबाद की बात करें वहाँ पर भी ऐसा व्यापक रूप, यहाँ तो फिर भी थोड़े दिन अधिक मिल गए, जो मुजफ्फरनगर को दिन मिले बीच में केवल दो दिन मिले, क्योंकि उनको 10 तारीख को इतला दी गई कि आपके यहाँ सत्संग है, और वहाँ पर 13 तारीख का प्रोग्राम इतवार का था, तो बीच में उनको केवल दो दिन मिले तैयारी करने के लिए, और तैयारी करने के लिए भी दो दिन मिले। उधर जब देखा महापुरुषों का उत्साह, संतों का, कि इसी तरह से अथाह सागर जैसा विशाल रूप बना, तो सभी हैरान थे कि अक्सर महीना महीना लोग पोस्टर छाप कर पता नहीं क्या क्या प्रचार करते हैं, तब भी इतना सिलसिला नहीं बनता, और यहाँ तो दो दिन की सूचना में ही संगतें कैसे हूँ वहाँ के पहुँच जाते हैं। तो यही लगन है जो प्रमाण, ये प्रमाण है अपने आप में, जो लगन है, जो सच्चा इश्क है, जो इश्क है, जो ऐसी लगन लगी हुई है, ये उसी के कारण ये कदम बढ़ते हैं परमार्थ के लिए, भक्ति को निभाने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो उसी तरह से आपने भी आज इसी प्रकार का ये प्रमाण दिया है, तो दातार कृपा करे, आप सभी को ऐसी ही शक्ति दे, तन मन धन के सुख दे, जिम्मेदारियां भी निभाती चली जाएं और सभी भक्ति भी निभाते चले जाएं। सात संगत जी धन्य।